ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के निदेशक शेखर कपूर के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय की विशेष बातचीत।
श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने फिल्मकार और इफ्फी के 55वें संस्करण के फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर जी। शेखर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
शुक्रिया जी।
शेखर जी, अगर हम इफ्फी के इस संस्करण की बात करें तो क्या कुछ नया या क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलने वाला है पिछले सारे संस्करण से?
सबसे पहले चीज, हम सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल सिनेमा और अपने, लेकिन ऑडियंस को सेलिब्रेट नहीं करते है। हम हैं क्योंकि ऑडियंस है, हम हैं। मुझे याद है बचपन में हम जाते थे थिएटर तो वो पंखों की आवाज़ आती थी इतनी ज़ोर से, एयर कंडीशनिंग होता नहीं था, गर्मी और पसीना आता था और साथ में जरूर कोई माँ बैठी होती थी, उसके साथ बच्चा रो रहा होता है और नीचे कभी कभी चूहे थे, फिर भी हम जाते थे फिल्म देखने। तो फिल्म देखना तो हमारे कुछ ऐसा है कि हमारे स्किन में है, कुछ है इंडिया में कि हम दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर हैं, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा फिल्में हम देखते हैं। तो उस ऑडियंस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जाते हैं, कुछ पैसा देते हैं और उसी लिए तो हम खड़े रहते हैं। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि चलो ऑडियंस को सेलिब्रेट करें आगे चल के। दूसरा ये है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी तो आ रहा, टेक्नोलॉजी तो बदलता रहता है, ऐसा ना हो कि हमारी फिल्में, हमारे फिल्म मेकर पीछे रह जाएं। तो वेव्स इसलिए हमने डाला है उसमें कि लोग आकर हमारी देखें टेक्नोलॉजी, और हमारे यहाँ के जो लोग हैं यूथ, वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप अगर आज फेसबुक को इंडिया में बैन कर दो, फेसबुक गिर जाएगा। फिल्म एक फॉरेन टेक्नोलॉजी थी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी को लेकर हमने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर ली। लेकिन आगे क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, आगे AI आएगा तो AI के ऊपर कुछ लोग सिखाना कि ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। फिर डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं, लेकिन 30-30 सेकंड की फिल्में होती हैं कहानी बताने का एक जरिया। तो कहानी तो हम 30 सेकंड में बता सकते हैं, 1 मिनट में भी बता सकते हैं, और वही हो रहा है। अब लोगों के पास शायद टाइम नहीं है, हम फ़ोन पर देखना चाह रहे हैं, फ़ोन पर 3 घंटे की फिल्म देखना तो मुश्किल है, लेकिन छोटी छोटी फिल्में लोग यूथ बना रहा है, तो वो उसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए और उसको इंकरेज भी करना चाहिए। चाहे आप यूट्यूब पर फिल्म डालें 3 मिनट की, 1 घंटे की, या 30 सेकंड का वीडियो पर फिल्म आप डालें, ये सब टेक्नोलॉजीज आगे बढ़कर बहुत इंपॉर्टेंट हो रही। और कहानी बताने के बहुत सारी हैं जो अब यंग, हमारे यूथ की बात करूँगा मैं, हमारे जो यंग लोग हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो उस पे थोड़ा ध्यान देना, वो वेज में आएगा। लेकिन AI पर मैं भी 1-2 सेशन यहाँ कर रहा हूँ कि AI ये चीज़ क्या है और कैसी चीज़, जो मैं तो कहता हूँ कि बड़े फिल्म मेकर का जो आगे जाकर टक्कर बहुत बड़े दुनिया की फिल्मों से नहीं होगी, 15 साल की लड़की है किसी बांद्रा के स्लम में बैठी हुई, वो एनिमेशन AI सीख रही है, और फिर वो हमारी जो बड़ी बड़ी 300-400 की फिल्में हैं वो ऐसी बना देगी, कंप्यूटर पर बैठे बैठे बना देगी, उसका कोई कॉस्ट ही नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर उसको हायर करना है कॉस्ट। तो ये बदलाव बहुत आ रहा है और ये बदलाव हमारे फिल्म मेकर्स को सीखना चाहिए। फिर क्योंकि मैं इतनी यूथ की बात कर रहा हूँ तो यंग फिल्म मेकर्स को और प्लेटफॉर्म चाहिए। तो क्या होता है, हम बड़े फिल्म मेकर्स आकर फिर उसको अपना लेते हैं और किसी को अंदर आने नहीं देते हैं।
शिखर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, कैसे तकनीक के सहारे कोई भी इंसान बेहतर फिल्में बनाने के बारे में सीख सकता है और बेहतर फिल्में बना भी सकता है। मेरे अगले सवाल में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि किस तरीके से इफ़्फ़ी जैसे फिल्म फेस्टिवल एक बहुत अहम योगदान देते हैं किसी भी युवा फिल्म मेकर के करियर में, ताकि वो इंस्पायर हो सके, बेहतर सिनेमा देख के बेहतर फिल्म मेकिंग कर सके।
आप जब किसी फिल्म को देखते हैं, और चलिए आपने कभी फिल्म नहीं बनाई, लेकिन आपके मन में है कि मैं कहानी सुनाऊँ, किसी न किसी तरीके से कहानी सुनाऊँ, फिर आप फिल्म देखते हैं और आपको रोना भी आता है, आपको हंसी भी आती है, कहानी भी अच्छी लगती है, फिर घर जाकर आप सोचते हैं ये कहानी तो बहुत अच्छी थी, ये कैसे बनाई, कैसे दुनिया में फैलाई। तो इसलिए फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट है कि यंग लोग आए, 10-15 हज़ार लोग तो इस बार आ जाएंगे, और अगर कमरे और हों तो 20-25 हज़ार लोग आएंगे, यंग लोग कहीं कहीं से पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और वो देखेंगे, कहेंगे हम भी कहानी सुनाएं, फिर देखें ये लोग कैसे सुनाते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको पोइट्री लिखने का शौक़ है तो दुनिया के सबसे पोइट को सुनते हैं आप, अगर आपको म्यूज़िक कंपोज करने का शौक़ है तो दुनिया के सबसे बड़े कंपोज़र और इंडिया के सबसे AR रहमान के गाने आप सुनते हैं, कहते हैं ये कैसे बनाता है, मैं भी बनाना चाहता हूँ। तो ये सब दूसरों को सुनने से आपको सीखने को मिलता है, इसलिए जो फेस्टिवल आते हैं मैं तो सीखने को मिलता है, और अच्छा है थिएटर में 500-600 लोग हों, सब हंस रहे हैं, तो आपको पता है कि ये तो सबको इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं। तो फेस्टिवल में आकर ये सीखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस करना।
शेखर जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल्मों की और कैसे उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है बाल मन पर, एक युवा फिल्म मेकर के एस्पिरेशंस पे, आपके लिए वो पहली फिल्म कौन सी थी? ऐसा कोई एक जीवन का लम्हा जब आपको लगा कि मुझे फिल्में बनानी है, बेहतर काम करना है फिल्मों के क्षेत्र में?
मुझे बचपन में मैं गया था फिल्म देखने, मेरे स्कूल के पास एक सिनेमा हॉल था, वहाँ फ्री फिल्म दिखाते थे हर संडे। मुझे याद है टार्जन देखी मैंने, एक आदमी एक जंगल में चिल्ला रहा है, उधर से गोरिल्ला आ रहा है, शेर भी आ रहा है, ये और मैं उस दुनिया में खो जाता था। तो शुरू में कभी बच्चों की फिल्म भी देखी, सब कुछ देखा, तो ऐसा लगा मैं खो जाता था फिल्म में। फिर कोई हिंदी फिल्म देखी, मैंने कहा पहली हिंदी फिल्म मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन वो थी उड़न खटोला, कुछ समझ नहीं आया, बच्चा था, लेकिन मुझे वो याद है गाना, लिम्बी का गाना, उड़न खटोले वाले उड़न खटोले, ऊपर से कोई जहाज आ रहा है, ये क्या है? तो बचपन में ऐसा लगा कि यार ये तो सब देख रहे हैं, देखो थिएटर में बैठे टार्जन जब किसी शेर से लड़ता है तो सारा हॉल ताली मारता है, ये कैसा है? तो आहिस्ते आहिस्ते फिर मैंने कहा ये मैं करना चाहता हूँ, अपनी कहानी सुनाकर दूसरों को प्रभावित करना चाहता हूँ।
शेखर जी, बतौर फिल्म निर्माता आपका बहुत ही लंबा करियर रहा है, लेकिन इस बार एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर के तौर पर किस तरीके से आप जो है एक एडवाइजरी रोल में मदद कर पा रहे हैं फेस्टिवल मैनेज करवाने में, और जो भी नया कुछ हम इस बार देख पा रहे हैं फेस्टिवल में, उसमें किस तरीके से आपका क्रिएटिव इनपुट हेल्प कर रहा है?
मुझे तो सर 1.5-2 महीने हुए हैं अभी आए, इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एडवाइजरी कैपेसिटी में हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ, ये भी तो सीखना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल कब से चल रहा है, कोई चला रहे हैं ऐसा और अच्छा फेस्टिवल चला रहे हैं, उसको बेहतर कैसे करना है, अब पहले तो सीख लूँ कि चल कैसे रहा है और कौन चला रहा है और क्यों वो क्यों नहीं ये बात बेहतर कर पाए, तो सब समझना पड़ेगा मुझे, नहीं तो एडवाइस देने वाले तो बहुत खड़े होते हैं, लेकिन अच्छी ठीक एडवाइस देने वाला तो वही सीख सीख कर करने से होता है।
शेखर जी, इस संस्करण में विविधता और समावेशिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, चाहे हम युवा फिल्मकारों की बात करें या महिला फिल्मकारों की बात करें, तो कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सबको समान अवसर मिले, विशेषकर इफ्फी के इस संस्करण में?
ये तो होना चाहिए, बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे समाज में हम समझते हैं बदलाव आना चाहिए, तो वो बदलाव भी ला सकते हैं इससे पुरानी फिल्मों में। इलाहाबाद मुझे याद है, अगर आप इंडियन फिल्म की हिस्ट्री देखें तो औरतें रोती रहती थी सर, पति के पैर पर पड़ती रहती थी सर, वो बदल गया, अब नहीं ऐसा होगा, वो क्यों? फिल्मों ने बदला है, फिल्मों ने उसको अडॉप्ट किया, फिर टीवी सीरीज ने उसको अडॉप्ट किया, तो ये बदलाव तो एक सोशल कॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी हर फिल्म पे होती है, हर फिल्म मेकर पे होती है, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहें कि नहीं लेना चाहें। ऐसे हैं कि कुछ वो उन पुरानी बातों की फिर बात करते हैं, लेकिन उनको ऑडियंस एक्सेप्ट भी नहीं करती इतना।
अगर आज के भारतीय सिनेमा की बात करें, तो क्या कोई ऐसा विषय या कोई एक ऐसी विशेष थीम है जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है उससे गायब दिखाई देती है? आपकी क्या राय है इस पर?
अभी देखिए लापता लेडीज जारी है ना ऑस्कर पे, 12th फेल इतनी बड़ी सक्सेस हुई, कितनी अच्छी फिल्म है वो, ऐसी बहुत है। और मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स ने, ऐसा नहीं, विनोद चोपड़ा बहुत मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर है, लेकिन उस 12th फेल बनाई।
शेखर जी, जब इस पूरे फेस्टिवल की एक दिशा निर्धारित की जा रही थी, तब लगातार आपकी तरफ से हमने एक बात सुनी कि कैसे जो है भारतीय सिनेमा को वेस्टर्न सिनेमा से कंपेयर नहीं करना चाहिए और हमें अपने ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साक्षात्कार की शुरुआत में भी आपने इस बारे में बात की। जो हमारे श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि इसके और मायने क्या हैं इस बात के?
ठीक है, हमने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ली, जो फिल्म है, स्क्रीन है, प्रोजेक्शन है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें हमने अपना फोक आर्ट डाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ यही नहीं, तो देखिए हमारे यहाँ ट्रेडिशन नौटंकी का बहुत, नौरस नौटंकी के जो प्लेस थे, गांव से गांव जाते थे, वहाँ गांव वालों को ही लेकर उनके साथ कहते चलिए आप गाना गा दीजिए, बीच में आप थोड़ी सी कॉमेडी कर दीजिए। नौटंकी बहुत रामलीला थी, लेकिन और भी कई कहानी होती थी उनके पास, तो स्टेज पर उठ के कहानी सुनाते थे और वो थोड़ा सा गाना, थोड़ी सी कॉमेडी, और कभी 9-9 दिन चलती थी वो, कॉमेडी और गाने ना हो तो वो कैसे आए कहानी 9 दिन सुनाइए। तो उसको हमने अपने फिल्म में अडाप्ट कर लिया। अब उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो हमारे थिएटर का आर्ट फॉर्म है आ गया, या पारसी थिएटर का आर्ट फॉर्म वो आ गया اس میں, تو مطلب ہمارے تو اندر رس میں جو ہمارے کہانی سنانے کے طریقے ہیں وہ ہم نے فلم میں ڈال دیے. تو وہ تبھی تو ایسے کہتے ہیں نا انڈین فلم میں گانے یار کیوں گانے ہیں, اس لیے گانے ہیں کیونکہ ہمارے رس میں ہمارے اندر گیت بہت ہے اس لیے گانے ہیں.
شیکھر جی, چونکہ آپ بات کر رہے تھے کہ کیسے بھارت کے الگ الگ پرانتوں میں وبھن طریقوں کے لوک گیت اور ناٹک پرچلت ہیں اور جن کا سنیما میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ایک عکس دکھا, میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ کل ادگھاٹن سماروہ میں ویوز او ٹی ٹی لانچ ہوا پرسار بھارتی کا, جو کہ تقریباً 12 بھاشاؤں میں سنیما اور کانٹینٹ دینے والا ہے, تو کیسے ریجنل سنیما کی ایک بہتر پہنچ اس سے سنشچت ہو پائے گی؟ اور حال کے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے جو ہے ریجنل سنیما نے بہت ترقی کی ہے, تو بھوشیہ کیسا دیکھتے ہیں آپ بھارتی ریجنل سنیما کا؟
ابھی ریجنل سنیما نام چھوڑ دینا چاہیے. کیوں, ایک بار ایسا تھا کہ میں چیئرمین تھا انڈین فلم ایوارڈز کا, تو ویسے یہ ہندی فلم ہے, یہ ریجنل فلم ہے, ریجنل سے تو ہندی فلم سے بہت زیادہ بہتر ہے, یہ کیا یہ ریجنل فلم کیوں بولتے ہیں؟ بالی ووڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس کے جو بالکل میڈیا نے گلیئر اتنا بڑا کہ اس کے وہ ہیڈ لائٹ کے پیچھے کیا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. آپ چھوڑ دیا ابھی تو, اب کیا ہے, آر 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 سب کو بیٹ کر رہی ہے, ریجنل سنیما ہندی سنیما سے بہتر ہو گیا, تو اب ہم کہتے ہیں تیلگو سنیما, اب تو ریجنل نہیں کہتے. تو ریجنل ایک ایسا تھا کہ وہ وہاں کے ہیں بھیا, وہ زیادہ امپورٹنٹ لوگ نہیں ہیں, لیکن ہندی سنیما ہے ابھی آپ دیکھیں تو ریجنل سنیما کوئی نہیں ہے, تیلگو سنیما ہے, تمل سنیما ہے, ملیالم ہے, جو مجھے تو لگتا ہے سب سے اچھی فلمیں آج کل ملیالم سنیما میں بن رہی ہیں, بنگالی ہے, اڑیا ہے, پنجابی ہے, بندیل کھنڈی ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو ریجنل سنیما کو آپ کہہ نہیں سکتے. ہندی سنیما کی پرابلم یہی تھی کہ ہم کہیں کے نہیں ہیں, بس جنرل ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں وہ مسٹر سمیر ہوتے تھے یا مسٹر پوری اور مسٹر انل اور مس سیما, ان کے کچھ دوسرے نام ہی نہیں ہوتے تھے, کیوں ان کو ڈر لگتا تھا کہ نام دے دیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے وہ کون ہے. تو اسی لیے ریجنل سنیما اپنے روٹڈ طریقے سے باہر نکلا ہے, کہا کہ آپ غلط.
شیکھر جی, چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سبھی شروتاؤں کو جو آپ کو سن رہے ہیں, اگر آپ کوئی سندیش دینا چاہیں یا ایک پروسیس بتانا چاہیں کہ کیسے بہتر فلم میکنگ کی جا سکتی ہے اور کریئر میں بہتر کیا جا سکتا ہے.
دیکھیے, کریئر بنانا اور فلم بنانا دو الگ الگ چیزیں ہیں. کریئر تو ایسا ہے کہ میں فلم بناؤں اس سے پیسے کماؤں, یا آپ کہیں کہ بس میں فلم بنانا چاہ رہا ہوں, وہ تو کبھی بھی بن جائے گی آپ سے. آپ اپنے سیل فون پہ بنا کے وہ ایڈیٹنگ میں ڈال دیجئے اور یوٹیوب پہ دے دیجئے, آپ کی فلم بن گئی, آپ کی فلم ایڈٹ ہو گئی, آپ کی فلم ریلیز ہو گئی, کئی فلم میکر وہاں سے نکلیں گے. لیکن کہانی سنانے کا پیشن وہ نہیں ہے تو مت کرو, پھر تو ایسی شوق ہے. اب پیشن ہے تو پھر آپ فلم بناؤ, پھر آپ اچھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فلم نہ چلے نہ لیں, پر ٹھیک ہے, وہ آرٹسٹ کو تو رسک لینا ہی ہوتا ہے. آرٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایک پیشن ہے, وہ پیشن بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے, اور بادہائیں آتی ہیں اور آبسٹیکلز آتی ہیں, اور جتنی بڑی آبسٹیکل اتنی اوپر چھلانگ مارنی پڑتی ہے, اتنی زیادہ کریٹیویٹی چاہیے. تو یہ سب سوچ کے آگے چلنا ہے کہ یہ آسان زندگی نہیں ہے, لیکن کون کہتا ہے کہ آرٹسٹ کی آسان زندگی.
شیکھر جی, آج ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑنے کے لیے اور آکاشوانی سے وستار سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد.
شکریہ.
ابھی آپ سن رہے تھے بھارتی انتراشٹری فلم مہوتسو 2024 کے ندیشک شیکھر کپور کے ساتھ آکاشوانی سمواددتا اومویش اپادھیائے کی وشیش بات چیت. یہ کارکرم آکاشوانی کے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستت کیا گیا. اسے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں. اس کارکرم کے سمبندھ میں اپنی پرتیکریا آپ ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں. ای میل کا پتا ہے airnsdtalks@gmail.com اور واٹس ایپ نمبر ہے 9289094044.